हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सिद्धार्थ को झलक का रणविजय के करीब होना कुछ खास पसंद नहीं आया। वो तुरंत आगे बढ़ते हुए बोला, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। तब तक रोनित वहाँ आया और घायल रणविजय को बाहर लेकर जाने लगा और बेहोश पड़े दोनों लड़कों की भी ले जाने लगा, क्योंकि सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उन लोगों की जान जाए। वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़ सकता था, इसलिए उसने दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाने का फैसला किया था। वहीं बाहर जाने से पहले रणविजय ने एक बार मुड़कर रहस्यमय तरीके से झलक को देखा और बाहर जाने लगा। फिलहाल सिद्धार्थ के लिए झलक की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि झलक अभी भी पेटीकोट और ब्लाउज में मौजूद थी। जैसे ही झलक ने अपनी स्थिति का एहसास किया, उसने तुरंत अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश की। ये देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर अनचाही मुस्कुराहट आ गई। तभी झलक की साड़ी थोड़ी दूरी पर गिरी हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने उसे उतार दिया था। सिद्धार्थ तुरंत आगे बढ़ा, साड़ी उठा ली और झलक की साड़ी लेकर उसे खुद पहनाने। झलक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उसे बिल्कुल भी टच करे। इसलिए उसने उसके हाथ से साड़ी लेते हुए कहा था, मैं खुद पहन सकती हूँ, छोड़िए। ये बोलकर उसने उसके हाथ से साड़ी ले ली, लेकिन झलक को साड़ी पहनना नहीं आता था, इसलिए वो झलक से बोला कि वो चुपचाप खड़ी रहे। तब झलक ने उसे थोड़ा सा खुद से दूर करते हुए कहा था, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ये साड़ी पहन सकती हूँ, समझे आप। ये बोलकर झलक ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ हटाया और खुद साड़ी पहनने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। तब झलक ने साड़ी को लिया, उसे अच्छे से एक दुपट्टे की तरह चारों तरफ से लपेट लिया और बाहर आ गई। वहीं सिद्धार्थ ये देखकर अंदर ही अंदर दिल में मुस्कुरा उठा था और सोचने लगा था, क्या ये मुझसे मदद नहीं ले सकती थी। ये सोचते हुए वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर आते ही झलक ने देखा कि रोनित, जो अपने साथ रणविजय को गाड़ी में लेकर जा रहा था, उस वक्त रणविजय के सिर पर रुमाल बंधा हुआ था। तब झलक जल्दी से रणविजय के पास गई और रोनित को देखकर बोली थी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरी वजह से ही रणविजय जी को चोट लगी है, इसलिए मैं उनके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर रणविजय ने चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वहीं जैसे ही रोनित की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी, तो उसके हाथों में कंपकपाहट होने लगी थी, क्योंकि सिद्धार्थ लाल आंखों से उन लोगों की ओर ही देख रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था, ये क्या हो रहा है, बॉस तो आंखों से ही शोले निकाल रहे हैं और ये झलक मैडम खुद तो जलेगी, साथ ही हमें भी जलाएगी। क्योंकि झलक इस वक्त रणविजय के साथ थी और कभी उसे पानी पिला रही थी तो कभी उसकी कमर को रब कर रही थी। रोनित मन ही मन सोचने लगा, झलक मैडम क्या चुपचाप शांति से एक तरफ नहीं खड़ी रह सकती, खुद तो मरेंगी ही और मुझे भी मरवाएंगी। फिर उसने तुरंत झलक को देखकर कहा, झलक मैडम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं रणविजय सर को इस गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब क्योंकि पहले ही सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं और कुछ गाड़ियों में वे दोनों बदमाशों को हमारे गार्ड्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनकर झलक ने आसपास देखा, वहाँ सच में सिर्फ दो ही गाड़ी थी। वहीं रणविजय लाल आंखों से सिद्धार्थ का चेहरा देख रहा था, साथ साथ झलक के दिल में भी कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। फिलहाल उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, आप पहले रणविजय जी को हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। झलक खुद को रोक नहीं पाई और रणविजय को देखकर बोली, आपको कैसे पता चला कि वो दोनों मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ये सुनकर रणविजय को अचानक एक फ्लैशबैक याद आ गया। जब झलक घर से बाहर निकली थी, उसने अपने आदमियों के उसके पीछे भेज दिया था, ताकि वे झलक के बारे में सारी जानकारी जुटा सकें। और जैसे ही झलक अस्पताल से निकलकर सिद्धार्थ के अपार्टमेंट में गई, तो रणविजय को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि झलक सिद्धार्थ के आसपास भी जाए। लेकिन उससे पहले कि वो खुद वहाँ जाकर सिद्धार्थ और झलक से बातें करता, उसी वक्त झलक का किडनैप हो गया था। उनके हाथ में झलक की पूरी डिटेल थी, जो तुरंत ही रणविजय को भेज दी गई थी। रणविजय दादी से बात करते हुए तुरंत उठकर वहाँ आ पहुँचा था। फिलहाल उसने झलक को टालने के लिए अपने सर में दर्द होने का नाटक किया, ऐसा बर्ताव किया मानो उसे चक्कर आ रहे हों। तब रोनित बोला था, मैडम, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तब झलक ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ प्लीज, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। ये बोलकर झलक ने जल्दी ही रणविजय को गाड़ी में एक तरफ बैठा दिया था और मौका पाकर जल्दी ही रोनित रणविजय को लेकर रवाना हो गया। तब सिद्धार्थ ने रणविजय के एक्ट को ध्यान से देखा था, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान झलक पर था और इसलिए वो जल्दी ही अपनी गाड़ी लेकर आया और सीधा झलक को गाड़ी में बैठा लिया। इतना कुछ हो चुका था कि झलक बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसका सर घूमने लगा था। जैसे ही झलक का सर आगे की ओर झुकने लगा, सिद्धार्थ ने तुरंत एक हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया। ये देखकर झलक की हैरानी बढ़ गई। फिलहाल झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिद्धार्थ झलक के पूरे शरीर को स्कैन करने लगा। झलक के शरीर पर काफी सारे जख्म दिखाई दे रहे थे। उसके पेट, गले, हाथ, हर जगह जख्म दिखाई दे रहे थे। फिलहाल उसने उसको अपना कोट पहनाया और घूरते हुए नाराजगी से दांत पीसकर बोला, जब मैंने कहा था कि बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाओगी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए कहीं जाने की? झलक ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, देखिए मैं कहाँ गई थी इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं अपार्टमेंट में ही जा रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे कब अगवा किया गया। मुझे लगता है कि जरूर किसी की साजिश थी। फिलहाल झलक ने सिद्धार्थ से नहीं पूछा कि उसे कैसे पता चला कि झलक कहाँ है, क्योंकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ जरूर किसी न किसी जुगाड़ से वहाँ पहुँच गया होगा, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। वहीं दूसरी ओर दादी झलक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आकांक्षा ने जानबूझकर एक नाइट क्लब में, जहाँ झलक अपने दोस्तों से मिलने गई थी, उसका एक शॉर्ट वीडियो उन लोगों से रिकॉर्ड करवा लिया था। फिर उसने वो वीडियो दादी माँ को दिखाते हुए कहा था, दादी आपने इस लड़की को इतने अमीर परिवार में शामिल करने का फैसला किया है, पर जरा देखिए इसे जरा भी अकल नहीं है। देखिए किस तरह ये छोटे छोटे आदमियों के साथ पार्टी कर रही है। ये लोग चौकीदार हैं, ड्राइवर हैं, क्लब के सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनसे दोस्ती रखने की क्या जरूरत है? मैं इसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन ये लड़की मेरी कोई बात नहीं मानती। आकांक्षा ने कुछ इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि दादी माँ के चेहरे के हाव भाव बदल गए।
कहीं न कहीं आकांक्षा इस तरह से झलक की एक्टिविटी दादी के सामने पेश करके ऐसा करना चाहती थी। वो जानबूझकर झलक की छवि दादी माँ के सामने इस तरह की पेश करना चाहती थी, ताकि दादी माँ अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए झलक को पूरी महफिल के सामने इंट्रोड्यूस कराने का प्लान अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। फिलहाल दादी ने आकांक्षा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उनके होंछों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आकांक्षा को गहरी नज़रों से देख कर बोली थी, अच्छा आकाश बिटिया, तुम्हें कुछ काम था क्या? तुम शाम के वक्त यहाँ आई हो? क्योंकि मोस्टली आकांक्षा दिन में ही दादी माँ के पास आया करती थी, लेकिन इस तरह से आ जाने का क्या मतलब था? आकांक्षा, जो कि असल में वहाँ सिर्फ और सिर्फ झलक के बारे में किसी बुरी खबर को सुनने के लिए आई थी, उसने सोचा कि नाइट क्लब की दादी को वीडियो दिखाकर, जिसमें झलक अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक तक कर रही थी, वो वीडियो दादी को दिखाकर उनके मन में झलक के लिए कुछ तो नेगेटिविटी भरेगी। लेकिन यहाँ तो दादी उसी के आने का कारण पूछ रही थी। फिलहाल दादी के सवाल सुनकर आकांक्षा थोड़ा संभालते हुए बोली, दादी जी वो एक्चुअली मैं आज सिद्धार्थ के साथ डिनर करने के लिए जाना चाहती थी, और मैं उसे कब से फ़ोन ट्राई भी कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मुझे लगा शायद वो मेंशन में है, इसलिए मैं यहाँ आ गई ताकि यहीं से मैं और सिद्धार्थ डिनर करने के लिए चले जाएं। अब दादी ने शांति से सुना। उन्होंने केवल एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बोली, सिद्धार्थ तो घर पर नहीं है। तब जानबूझकर आकांक्षा इधर उधर देखते हुए बोली, अच्छा दादी झलक कहाँ है? झलक भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है।